नमस्कार भारत, तारीख 17 दिसंबर, दिन रविवार। मैं हूं आदर्श राठौर। राहुल गांधी ने संभाला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार, क्या नई चुनौतियों के लिए भी हैं तैयार?
राहुल गांधी को पार्टी को इलेक्शन में जितवाने का हुनर अब सीखना पड़ेगा। उनको जनता के अदालत में जाके अपना केस जीतना है।
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा, ड्रोन को लेकर जल्द तैयार होंगे नियम, मगर क्या है इनकी जरूरत?
आज ड्रोन के बारे में कुछ कानून है नहीं, एक अलग सा कानून होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हमने कभी ड्रोन देखे नहीं है। ड्रोन है वो एक नई किस्म के क्राइम लाने वाले हैं।
बताएंगे गुजरात के करोड़पतियों वाले गांव के बारे में, होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव का मसौदा पेश किया गया है, जिसमें ये घोषणा की गई है कि यरूशलम की स्थिति पर किसी भी एक तरफा निर्णय का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। इस प्रस्ताव को मिस्र ने पेश किया है। साथ ही इसमें सभी देशों से कहा गया है कि वो यरूशलम में दूतावास स्थापित करने से बचें। राजनयिकों का कहना है कि इसमें अधिकांश परिषद के सदस्यों का समर्थन है, लेकिन इसको लेकर अमरीका वीटो कर सकता है। गौरतलब है कि अमरीका ने यरूशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी रक्षा मंत्रालय यूएफओ यानी उड़न तश्तरी की जांच के लिए लाखों डॉलर का एक गुप्त कार्यक्रम चला रहा था। बताया जा रहा है कि अमरीकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में 2007 में शुरू हुए और 2012 में बंद कर दिए गए इस कार्यक्रम की जानकारी बहुत कम ही अधिकारियों को थी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कर सुधार योजना की सराहना करते हुए इसे अमरीका के मध्य वर्ग के लिए क्रिसमस का तोहफा बताया है। सीनेट और प्रतिनिधि सभा में वार्ताकारों के एक समझौते के बाद मंगलवार को अमरीकी संसद इस कानून को मंजूरी दे सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि अगर ये कानून बनता है तो इससे हर किसी को लाभ होगा। आलोचकों का कहना है कि कर में कटौती के कारण सरकार के आर्थिक घाटे में भारी वृद्धि होगी। वहीं ट्रंप का कहना है कि जो बिल का विरोध कर रहे हैं वो गलत होंगे। डेमोक्रेट्स के पास अपना अधिकार है, वे जानते हैं कि बिल किस बारे में है। वे अमीरों की बात करते हैं। इस क्रिसमस पर देश के मध्यम आय वर्ग के लिए ये एक बड़ा तोहफा होने जा रहा है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेता के तौर पर अपने आखिरी भाषण में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने कहा है कि पार्टी का भविष्य खतरे में है। उन्होंने कहा कि पार्टी को सबसे बड़ा खतरा इसके अंदर हो रही गुटबंदी और भ्रष्टाचार पर नरम रुख अपनाने से है। वो पार्टी के सम्मेलन में बोल रहे थे जहाँ प्रतिनिधि नया नेता चुनेंगे। वहीं जुमा 2019 में होने वाले अगले चुनावों तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने रहेंगे। कैलिफोर्निया प्रशासन ने जंगल में भयंकर आग लगने के कारण सेंट बारबरा इलाके को खाली करने के आदेश जारी किए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ताज़ी उत्तरी हवाएं आग को प्रशांत तट की ओर ले जाएंगी। अग्निशमन दल ने चेतावनी दी है कि अगर आग सैन इसिड्रो घाटी तक गई तो इसे मोंटेसिटो इलाके के घरों तक पहुँचने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ऑस्ट्रिया के चांसलर नामित किए गए सेबास्टियन पुट्स ने कहा है कि वो उस सरकार का नेतृत्व करेंगे जो साफ तौर से यूरोपियन यूनियन के पक्ष में रहेगी। हालांकि पुट्स ने यूरोपियन यूनियन को देश के आंतरिक मुद्दों में दखल देने की जगह बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। पुट्स की रूढ़िवादी पीपल्स पार्टी का आप्रवासी विरोधी फ्रीडम पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है।
हम
एक स्पष्ट यूरोपियन समर्थक दृष्टिकोण पर सहमत हैं, जिसका मकसद यूरोपियन यूनियन की सहायता को मजबूत करना है। यूरोपियन यूनियन को बड़े मुद्दों पर मजबूत होना चाहिए और खुद को छोटे मुद्दों से पीछे खींचना चाहिए। ये थे ऑस्ट्रिया के नामित चांसलर सेबास्टियन पुट्स के शब्द। अमरीकी सरकार द्वारा मानवीय सहायता देने की पेशकश को वेनेजुएला सरकार ने ठुकरा दिया है। वेनेजुएला ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन को इसकी अत्यंत गरीबी में रह रहे लाखों अमरीकी नागरिकों के भाग्य की चिंता करनी चाहिए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श राठौर। राहुल गांधी अब कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कल एक समारोह में उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई, जिसमें उन्होंने शांति, प्यार और सद्भावना का संदेश दिया और नई जिम्मेदारी पर खरा उतरने की कोशिश का वादा भी किया। लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी ने उन पर निशाना साधा और कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी करार दिया। सुनिए मानसी दास की रिपोर्ट।
आज मैं आखिरी बार आपको कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में संबोधित कर रही हूं। एक नया दौर, एक नए नेतृत्व की उम्मीद आपके सामने है।
लगभग 19 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने कल पार्टी की कमान राहुल गांधी के हाथों सौंप दी। इसी महीने 47 साल के राहुल गांधी निर्विरोध 132 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए थे। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने वाले नेहरू गांधी खानदान के छठे सदस्य बन गए हैं। उनसे पहले मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। हाल में गुजरात चुनाव में आक्रामक रूप में दिखे राहुल ने पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला।
The Congress took India into the 21st century, while the Prime Minister today is taking us backwards to a medieval past.
राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस भारत को 21वीं सदी में लेकर आया, जबकि प्रधानमंत्री उसे पीछे मध्ययुग में ले जा रहे हैं, जहां लोगों की इसलिए बर्बर हत्याएं कर दी जाती थी क्योंकि वो दूसरों से अलग थे। ये घिनौनी हिंसा हमें दुनिया में शर्मिंदा करती है। इस देश का ऐतिहासिक रूप से दर्शन रहा है प्यार और संवेदना, लेकिन इस डर से उस पर धब्बा लग गया है। इस महान देश को क्षति हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि आज राजनीति में बहुत से लोग निराश हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल लोगों को मजबूती देने की बजाय उन्हें दबाने के लिए किया जा रहा है और आज की राजनीति पूरी तरह करुणा और सत्य से खाली हो चुकी है।
यही हम बीजेपी के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपने देश में आग लगा दी, उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है, और आज बीजेपी के लोग पूरे देश में आग और हिंसा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। वो आग लगाते हैं, हम बुझाते हैं। वो गुस्सा करते हैं, हम प्यार करते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें।
राहुल गांधी ने पार्टी की कमान संभाली और भाजपा पर तंज कसा तो भाजपा ने भी देश में भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया। संबित पात्रा ने कहा,
अध्यक्ष चाहे पुराने हो, अध्यक्ष चाहे नए हो, चाहे कोई कहता हो कि कांग्रेस इज एन एंशियंट थॉट प्रोसेस, मगर वास्तविक रूप से चाहे पुराने अध्यक्ष हो या नए अध्यक्ष हो, कांग्रेस इज अ करप्ट थॉट प्रोसेस। कांग्रेस एक भ्रष्टाचार से जड़ित सोच है।
मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने को वो वंशवाद का नाम दे चुके हैं। इसी महीने गुजरात के वलसाड़ के धर्मपुर में एक रैली में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी नहीं, कुनबा है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक खुद मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये पार्टी नहीं है, एक कुनबा है, और उनका किसी का सत्ता पर आने का मतलब है कि बादशाह की औलाद का बैठना। ये औरंगजेब राज, उनको मुबारक।
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राहुल गांधी के लिए अध्यक्ष पद कांटों भरा ताज है और उनके सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल मेघालय, कर्नाटक में विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा से टकराना और जीत हासिल करना है। साथ ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी के पुनर्गठन की। इसमें वो कितना कामयाब होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। मानसी दास, BBC दिल्ली।
राहुल गांधी को ताज तो मिल गया है, लेकिन बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया है। आज कांग्रेस की सरकार केवल 5 राज्यों में है। उसके सामने इन राज्यों को बचाने के साथ साथ न सिर्फ और राज्यों में सरकार बनाने की चुनौती है, बल्कि लोकसभा चुनाव की तैयारी भी उसे करनी है। इसके लिए राहुल गांधी कितने तैयार हैं? हमारी सहयोगी मानसी दास ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा से यही सवाल किया।
When the going gets tough, the tough get going. You know, ये कहावत है अंग्रेजी की, जब कठिनाइयां बहुत हों तो फिर वो कठिनाइयों को फेस करने के लिए जो लोग कठिनाइयां झेलने में सक्षम है वो अच्छा काम करते हैं। क्राइसिस में कभी कभी लीडरशिप बन के निकलती है। राहुल गांधी को मनोनीत कर दिया गया कांग्रेस का अध्यक्ष इलेक्शन प्रोसेस के जरिए, लेकिन उनको जनता के अदालत में जाके अपना केस जीतना है। वो किसी भी लीडर के लिए वो टेस्ट होता है और वही मोहर मानी जाती है जनता की उनकी अध्यक्षता पे। तो राहुल गांधी को अपनी पार्टी को इलेक्शन में जितवाने का हुनर अब सीखना पड़ेगा। अब देखना यह है कि गुजरात के इलेक्शन का क्या रिजल्ट आता है। अगर गुजरात के इलेक्शन में कांग्रेस की हार भी होती है, ऐसी हार जिसमें कांग्रेस अपनी इज्जत बचा लेती है, हारने के बावजूद अपने आंकड़े बढ़ा लेती है, तो मैं समझता हूँ अच्छी शुरुआत होगी। लेकिन संस्था को नया स्वरूप देना, उसको नया रूप देना, उसको नई शक्ति देना और जमीन पे ऐसे कार्डर्स क्रिएट करना, ऐसे कार्यकर्ता क्रिएट करना जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुकाबला दे सके, ये सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन उनके सामने है, क्योंकि इतनी कमजोर कांग्रेस पार्टी अपने 130 वर्ष के इतिहास में कभी नहीं रही और पोस्ट इंडिपेंडेंस तो कभी भी नहीं रही। वो सोनिया गांधी ने जो चैलेंज फेस किया उससे भी बड़ा चैलेंज है। सोनिया गांधी जब आई थी उन्होंने स्वयं अपने आज भाषण में कहा कि सिर्फ 3 प्रांतों में सरकार थी कांग्रेस की और कांग्रेस सत्ता से बाहर थी केंद्र में, लेकिन 98 से लेकर 2004 तक 6 साल के भीतर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई केंद्र में और दूसरी बार फिर आ गई 2009 में और 21 प्रांतों में अपनी सरकार बना ली। क्या ये जादू राहुल गांधी दिखा पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है।
लेकिन हम इतना तो मानते हैं कि गुजरात चुनाव में जिस तरह का समर्थन उन्हें मिला है, 1 साल पहले के राहुल गांधी और आज के राहुल गांधी में फर्क दिखता है।
नेता जब निखरता है, जब जनता का उसको देखने का अंदाज बदल जाता है, वो किसी भी नेता को पैदा करना पड़ता है और वो मैं समझता हूँ गुजरात में उसमें सफल हुए हैं। उसमें वहां पर लोग उनको सुनने को तैयार थे, तन्मयता से सुनते थे, क्योंकि वो ऐसे मुद्दों पे बात करते थे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे और उसके चलते जनता उनको नई नजर से देखना शुरू कर दिया। अगर वो वोट में तब्दील हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा राहुल गांधी के लिए।
वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा बता रहे थे कि राहुल गांधी के सामने अब क्या क्या चुनौतियां हैं। भारत प्रशासित कश्मीर के त्राल इलाके में निजी स्कूल के एक शिक्षक जोड़े को उनकी शादी के दिन स्कूल प्रशासन ने नौकरी से निकाल दिया है। स्कूल प्रशासन का आरोप है कि शादी से पहले दोनों शिक्षक स्कूल में रोमांटिक गतिविधियों को अंजाम देते थे, लेकिन शिक्षक जोड़े इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मीडिया में इस तरह की खबरें आई हैं और इन खबरों के आने के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग ने मामले का कड़ा संज्ञान लिया है। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
जिस दिन 30 वर्ष के तारिक अहमद भट्ट और उनकी पत्नी सुमैया जान शादी के बंधन में बंध रहे थे, उसी दिन उनको ये बुरी और निराश कर देने वाली खबर भी स्कूल प्रशासन से मिली कि दोनों को ही नौकरी से निकाल दिया गया है। तारिक और सुमैया बीते कई वर्षों से जिला पुलवामा के पापोर इलाके में कायम मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में शिक्षक के तौर पर काम करते आए हैं। दोनों ही जिला पुलवामा के त्राल कस्बे के रहने वाले हैं और एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। दोनों को स्कूल की नौकरी से निकाल देने की स्कूल प्रशासन की दलील यह है कि दोनों ही स्कूल में रोमांटिक गतिविधियों को अंजाम देते आए हैं, जिससे स्कूल और स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों पर बुरा असर पड़ रहा था। तहम तारिक का कहना था कि उन्होंने कोई लव मैरिज नहीं किया है, बल्कि घर वालों ने उनकी शादी तय की है। तारिक इन आरोपों का खंडन करते हुए कहते हैं कि स्कूल प्रशासन को हमारी मंगनी के बारे में 6 महीने पहले जानकारी थी। वो बोले,
30 नवंबर को जिस दिन हमारी शादी थी तो दोनों को हमें कॉल आती है, पहले मुझे कॉल है, उसके बाद मेरी मिसेज को, यही प्रिंसिपल सर तारिक अहमद भट्ट उसका भी नाम है, तो उसने मुझे कॉल की कि आप स्कूल अब कल से नहीं आएंगे, आपकी जरूरत नहीं है, आपकी वजह से स्कूल बदनाम हुआ है
जी।
और उसके बाद उसने कॉल कट कर दी, मेरा कुछ सुना ही नहीं वापस।
ठीक है,
तो मेरी मिसेज को भी उसी दिन कॉल की है। तो सर मतलब खुशी का माहौल उस वक्त था, लेकिन जब उन्होंने कॉल की तो सारे मेहमान यहाँ पे थे, मतलब पता नहीं कि क्या हुआ, यहाँ पे किसी ने खाना भी नहीं खाया, इतनी परेशानी, इतनी उदासी सब में हुई, मतलब इतने परेशान सब लोग है यहाँ पे।
उनका ये भी कहना था कि शादी से पहले 1 महीने उन्होंने अपने स्कूल वालों से 1 महीने की छुट्टी भी मांगी थी। तारिक का ये भी कहना था कि ज़रूरत पड़ी तो वो अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, क्योंकि उन पर और उनकी पत्नी पर जो दाग लगा है वो उसको मिटाना चाहते हैं।
मैं तो तैयार हूँ, मैंने इसलिए ऐसा स्टेप लिया है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ मुझे वो वापस बुलाया काम करने के लिए, नहीं, ये मेरी इज्जत का सवाल, मेरी मिसी जो है इसकी इज्जत का सवाल है, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी इज्जत है इस पे जो दाग लगा है ये मैं मिटाऊ ये दाग, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर मैं गलत करता, अगर मेरे जहन में कुछ ऐसा इंटेंशन होता कि मैंने कुछ गलत किया है, तो शायद मैं ये स्टेप नहीं उठाता।
स्कूल के चेयरमैन जी एन भट्ट ने बीबीसी को बताया कि जो भी स्कूल प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई की है वो जायज नजर आ रही है। तहम साथ ही उनका ये भी कहना था कि आज इस पूरे मामले को कश्मीर जोन के डायरेक्टर एजुकेशन के साथ उठाया जा रहा है, जिसके बाद ही मामले की पूरी जानकारी मीडिया के साथ साझा की जाएगी। इस बीच जुम्मा को राज्य के मानवाधिकार आयोग ने मामले का सख्त नोटिस लेते हुए स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर एजुकेशन से 18 दिसंबर तक मामले की पूरी रिपोर्ट तलब करने के अलावा प्रिंसिपल से आयोग में पेश होने के लिए कहा है। माजिद जहांगीर, बीबीसी, श्रीनगर।
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का कहना है कि आने वाले एक दो महीनों में मानव रहित विमानों यानी कि ड्रोन्स को लेकर नियम तैयार कर लिए जाएंगे। डीजीसीए ने ड्रोन खरीदने, चलाने, बेचने या फिर नष्ट करने को लेकर पिछले महीने कुछ नियमों का मसौदा पेश किया था। सुरक्षा के लिहाज से अक्टूबर 2014 में डीजीसीए ने आम नागरिकों के ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हमारी सहयोगी मानसी दास ने बात की साइबर सुरक्षा मामलों के जानकार विजय मुखी से और पूछा कि आज के समय इसकी कितनी जरूरत है।
देखिए, ये जो सिक्योरिटी मामला है ये दो साइड है। देखिए, आज जब देखेंगे बहुत से पुलिस वाले, जो पुलिस फोर्सेस है एडवांस कंट्रीज में, वो ड्रोन्स का बहुत यूज करते हैं, क्योंकि आपके पास ड्रोन है तो इसको आई इन द स्काई कहते हैं, आपको पता चलेगा कि क्राउड कैसा है, कितना बड़ा क्राउड है। लेकिन जब पर्सनल यूज होगा तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि मैं एक बैंक को चोरी करता हूँ तो मेरा ड्रोन ऊपर होगा, मुझे पता चलेगा कि पुलिस किधर किधर है, तो मैं, मुझे भागना है तो मुझे कौन सा रूट लेके जाना है वो भी मैं जानता हूँ। तो इसलिए ड्रोन्स की अच्छे हैं और खराब भी है। आज आप और हम भी एक ड्रोन खरीद सकते हैं और उसके काफी कमर्शियल यूजेस, काफी पर्सनल यूजेस है।
सर, अगर बात करें हम ड्रोन की तो ये मानेंगे कि सुरक्षा के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है और कई देशों में इसका इस्तेमाल आधिकारिक तौर पे भी होता है। लेकिन जब पर्सनल लेवल पे ड्रोन का इस्तेमाल होता है तो बच्चे उसका इस्तेमाल खेलने तक के लिए भी कर सकते हैं। क्या इन रेगुलेशंस में इस चीज के बाबत भी कुछ बात आ सकती है?
हाँ, क्योंकि आप देखेंगे जो चाकू है वो एक सर्जन के लाइफ में जान बचाता है, लेकिन एक क्रिमिनल के हाथ में वो जान ले भी सकता है। देखिए, आज ड्रोन के बारे में कुछ कानून है नहीं, ना कोई कानून, एक अलग सा कानून होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हमने कभी ड्रोन्स देखे नहीं है। तो जैसा आप एक कंपनी है जो लॉजिस्टिक्स में है, तो आप ड्रोन्स यूज करते हैं, कर सकते हैं कि आप लेटर आप एक जगह से दूसरी जगह आप भेज सकते हैं। ड्रोन्स का ये भी है कि सोच लो मुंबई में फ्लड्स है तो आपको पता चलेगा कि कौन से रास्ते में फ्लड्स है, कौन से रास्ते पे नहीं है। तो क्योंकि ये सब नए नए एप्लीकेशंस है जो पहले हमने कभी निकाले नहीं, तो इसलिए सरकार को भी प्रॉब्लम होगा कि वो लोग लाइन का ड्रॉ करेंगे। जो इन्फोर्समेंट है वो पुलिस करती है, जो हमारा जो साइबर एक्ट है वो ये नहीं कहता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार को कहने से कि ड्रोन्स अलाउड है, लेकिन आप मिसयूज करेंगे तो आप जेल में जाओगे। अभी साइबर क्राइम को छोड़े जो ड्रोन्स है वो एक नई किस्म के क्राइम लाने वाले हैं, तो पुलिस को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा। तो इसका यही सलूशन है कि आप एक्ट में लिखिए कि आप टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के साथ आप ये ड्रोन्स क्राइम को आप रोकेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ये सब नई क्राइम्स है, तो पुलिस को भी ट्रेनिंग चाहिए कि ड्रोन्स में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है।
साइबर सुरक्षा मामलों के जानकार विजय मुखी बता रहे थे कि ड्रोन कितने ज़रूरी हैं, कितने खतरनाक हैं और इनके लिए नियम बनाना कितना ज़रूरी है। वक्त हो चला है अखबारों की समीक्षा का। दिल्ली से छपने वाले अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद। क्या कहते हैं आज की अखबारों की सुर्खियाँ शाहिद?
आदर्श, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला है तो जाहिर सी बात है इसको जो है सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कांग्रेस प्रमुख ने पहले भाषण में नफरत की राजनीति पर हमला बोला। इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूँगा कि एक तस्वीर हर अखबार पे मिलेगी आपको ज़्यादातर कि राहुल गांधी सोनिया गांधी का माथा चूम रहे हैं और उसकी भी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा है। इसी से जुड़ी खबर है, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि रायबरेली से वो नहीं बल्कि उनकी मां सोनिया गांधी ही 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर खबर है कि पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग के 3 कर्मचारियों का ISI ने हनी ट्रैप कर उनसे संवेदनशील जानकारियां निकालने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही भारत इस चीज़ के बारे में जान गया और अभी उन अधिकारियों के खिलाफ जाँच चल रही है। दैनिक हिंदुस्तान लिखता है मधु कोड़ा को कोयला घोटाले में 3 साल जेल
जी।
साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। दैनिक हिंदुस्तान अखबार की एक खबर है कि इंडियाज मोस्ट वांटेड जो सीरियल आया करता था उसके निर्माता निर्देशक सुहेब इलियासी को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया है। जनसत्ता के पहले पन्ने पर खबर है ई वे बिल को मंजूरी मिल गई है, GST परिषद की बैठक में इसका फैसला किया जाएगा
जी।
और इसके अलावा नवभारत टाइम्स की पहली खबर है कि सीटें खाली तो सस्ता टिकट, मतलब ये रेल मंत्री पीयूष गोयल के हवाले से है। उन्होंने कहा है कि ट्रेन में सीटें अगर खाली रहती हैं तो उस पर डिस्काउंट दिए जाने की योजना पर विचार चल रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अखबारों की समीक्षा के लिए।
जरा अपने घरेमान में देखो क्या हाल हो गया है आपका। मैं आज फिर चुनौती देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी चुनौती देती, आओ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ो।
इस बार BJP के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव दबा के लड़ रही है, मिलकर लड़ रही है, एक साथ लड़ रही है, स्ट्रेटेजी के साथ लड़ रही है। चुनाव नैरेटिव पे जीता जाता है।
गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव, किसका दावा सही निकला, कौन गलत साबित हुआ, जानने के लिए सोमवार 18 दिसंबर को सुनिए BBC हिंदी का विशेष प्रसारण सीधे गुजरात से, रेडियो, ऑनलाइन और फेसबुक पर पूरे 1 घंटे, शाम 7:30 से 8:30 बजे तक। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शाम 8 से 8:30 बजे तक ये अतिरिक्त कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शॉर्ट वेव 9540 किलोहर्ट्ज, 5875 किलोहर्ट्ज, 11945 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर। 75 वर्षों से आपके साथ BBC हिंदी रेडियो।
तो गुजरात चुनाव के नतीजों पर खास बुलेटिन सोमवार को आप सुन सकते हैं। बात करते हैं गुजरात की ही। दक्षिणी गुजरात के गांव आमतौर पर कच्ची सड़कों, कच्चे मकानों और पिछड़ेपन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गुजरात में दर्जनों ऐसे गांव भी हैं जिन्हें करोड़पतियों के गांव कहा जाता है। ये गांव बेहद खुशहाल हैं, शहरों से बेहतर हैं। इन गांव के निवासियों ने अरबों रुपए बैंकों में जमा कर रखे हैं। गुजरात के कच्छ से हमारे साथी शकील अख्तर की रिपोर्ट।
गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है बल्दिया गांव। लगभग 2000 घरों वाले इस गांव को भारत का सबसे संपन्न और धनी गांव माना जाता है। स्थानीय पत्रकार गोविंद केराई बताते हैं कि इस गांव के निवासियों ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक राशि बैंकों में जमा कर रखी है।
लास्ट दो तीन साल का हम अगर डेटा देखें तो 9 बैंकों में से 1500 करोड़ रुपए डिपॉजिट थी और पोस्ट में जो थे वो अलग थे, तो करीबन 2000 करोड़ जैसी डिपॉजिट यहाँ पे है।
चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े सुंदर भवन इस गांव की संपन्नता का पता देते हैं। गांव के अक्सर मकानों पर ताले पड़े हुए हैं। देवजी बिजोड़िया बताते हैं कि यहाँ के अधिकतर निवासी विदेशों में बसे हुए हैं।
एक साल यहाँ रहता हूँ, एक साल वहाँ, बच्चे बाल बच्चे वहाँ हैं, बाहर हैं, मैं रिटायर हूँ अभी।
अच्छा, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की ऐसी ही स्थिति है।
हाँ, रिटायर
यहाँ जो लोग रह रहे हैं क्या सबका ऐसे ही है जैसे आपका बताया?
हाँ,
थोड़ा सा
रिटायर हम लोग ज़्यादा करके रिटायर रहते हैं। हमें ये देखो ये बैठा हुआ है, दोनों रिटायर हैं, वो UK का है, मैं केन्या का रहने वाला हूँ। यहाँ ज़्यादा के आदमी हैं केन्या, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नहीं ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा है, और लंदन और अफ्रीका में, अफ्रीका केन्या, युगांडा, टांजानिया, तीनों कंट्री में।
तो कमाई वगैरह करके लोग अब ज़्यादा वापस आ गए हैं या नहीं?
अब वापिस हम लोग कभी से नहीं आते, आते रहने के लिए मकान रखे हुए हैं, यानी समझ लो कि समरा उसकी माफक, हम लोग का वहाँ भी मकान रहता है, यहाँ भी मकान रहता है। अब यहाँ मकान है, हम लोग आते हैं तो 2-3 महीना रहते हैं।
यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर माधापुर गांव भी अपनी खुशहाली के लिए दूर दूर तक जाना जाता है। यहाँ 9 बैंकों की शाखाएं हैं और दर्जनों ATM लगे हुए हैं। एक स्थानीय निवासी खेमजी जादो ने बताया कि यहाँ के अधिकतर निवासी करोड़पति हैं।
तो है ना, हाँ सब धनवान है, काम करते हो और बचता है पैसा, सही है। हाँ करोड़पति है, आका कच्छ में पहला नंबर आता है, कच्छ में से गांव।
बताइए थोड़ा
ना, है था ना, बस सभी धनवान जो है, लेकिन ये बाहर घूमते घूमते यहाँ घूम के आते हैं और पैसा वापस दे है, पैसादार है, सभी सभी बैंक में खाता है उसका, और ब्रांच बहुत ज़्यादा है कच्छ में। हाँ माँ बाप यहाँ रहते हैं और लड़के कमाते जाते हैं, दूसरे दूसरे देश में जाते हैं, यहाँ आते हैं बार बार, मैंने दो साल में मैंने।
इस गांव के ज़्यादातर बाशिंदे पटेल बिरादरी के हैं। बल्दिया गांव के कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक जादव जी गरेसिया ने बताया कि यहाँ के लोग कई देशों में फैले हुए हैं।
इस गाँव के लोग अफ्रीका में मूलतः नैरोबी सिटी में ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पर इंग्लैंड में, उसमें भी लंदन में, और सेसल्स में भी ज़्यादा। सेसल्स में जो है वो एम्प्लॉई कैटेगरी के लोग है, और कॉन्ट्रैक्टर भी, बिजनेसमैन भी है, और एम्प्लॉई कैटेगरी के ज़्यादा है सेसल्स में।
लोगों ने वर्षों तक विदेशों में मेहनत के बाद धन दौलत और सफलता हासिल की है। माधापुर गांव की मुखिया परमला बहन अर्जुन पुड़िया का कहना है कि लोगों ने अपने गाँव से रिश्ता बनाए रखा है।
એટલે એ ફેમિલી સાથે ગયેલા હોય પણ આવીને એની જન્મભૂમિ હોય ત્યાં જ આવીને રહે।
नौजवान अपनी फैमिली के साथ बाहर कमाने जाते हैं, वे अपना पैसा यहीं जमा करते हैं और कारोबार में लगाते हैं और आखिर में यहीं वापस आ जाते हैं।
गुजरात के कच्छ क्षेत्र में फैले हुए इन गांव को करोड़पतियों का गांव कहा जाता है। लगभग 100 वर्ष पहले यहां के लोगों ने व्यवसाय और एक बेहतर जिंदगी की तलाश में विदेशों की तरफ जाना शुरू किया। वहां से वो एक बेहतर सोच और धन दौलत के साथ वापस आए, जिसे उन्होंने और आगे बढ़ाया। यह खुशहाली केवल इन्हीं गांव तक सीमित नहीं है। यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर भुज शहर स्थित है, जिसे भारत का सबसे खुशहाल शहर कहा जाता है। शकील अख्तर, BBC, बल्दिया, गुजरात।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने अपनी जीत की लय बरकरार रखते हुए दुबई में खेले जा रहे वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। कल खेले गए महिला एकल सेमीफाइनल में उन्होंने चीन की चेन यू फेई को 58 मिनट तक चले मुकाबले में 21-15, 21-18 से हरा दिया। आज फाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा, जिन्होंने एक अन्य सेमीफाइनल में थाईलैंड की रतचानोक इंतानोन को 17-21, 21-12, 21-19 से हराया। उधर भारत और श्रीलंका के बीच आज विशाखापत्तनम में मौजूदा 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ में एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां कल खेल के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 549 रन बना लिए थे। स्टंप के समय कप्तान स्टीव स्मिथ 229 और मिचेल मार्श 181 रन बनाकर खेल रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अभी तक 301 रनों की नाबाद साझेदारी हो चुकी है और पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 146 रनों की बढ़त हासिल हो चुकी है। इससे पहले इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 403 रन बनाए थे।
और इससे पहले कि विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव का मसौदा पेश किया गया है, जिसमें यह घोषणा की गई है कि यरूशलम की स्थिति पर किसी भी एक तरफा निर्णय का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी रक्षा मंत्रालय UFO यानी उड़न तश्तरी की जांच के लिए लाखों डॉलर का एक गुप्त कार्यक्रम चला रहा था। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कर सुधार योजना की सराहना करते हुए इसे अमरीका के मध्य वर्ग के लिए क्रिसमस का तोहफा बताया है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेता के तौर पर अपने आखिरी भाषण में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने कहा है कि पार्टी का भविष्य खतरे में है। कैलिफोर्निया प्रशासन ने जंगल में भयंकर आग लगने के कारण सेंट बारबरा इलाके को खाली करने के आदेश जारी किए हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर नामित किए गए सेबास्टियन पुट्स ने कहा है कि वो उस सरकार का नेतृत्व करेंगे जो साफ तौर से यूरोपियन यूनियन के पक्ष में रहेगी। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया मीना कोटवाल ने। देश दुनिया की ताज़ा खबरों और विश्लेषणों के लिए लॉगिन कीजिए bbchindi.com पर। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को दें इजाजत। नमस्कार।